ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। भारत के अहमदाबाद में 242 यात्रियों वाली एयर इंडिया विमान दुर्घटनाग्रस्त। दुर्घटना पर नेपाल सरकार ने किया दुख व्यक्त। मलेखु मुगलिंग सड़क स्तोरोन्नति के लिए कल से आषाढ़ 7 गते रात को सवारी आवागमन होगा बंद। बाजुरा के विकट हिमाली गांव पालिका के धीम गांव में बिजली पहुंचने से 273 घर लाभान्वित। शिक्षा को प्रविधि युक्त और जीवनोपयोगी बनाने पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दिया जोर। और भारत के अहमदाबाद में एयर इंडिया के एक यात्री विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 204 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। विपक्षी दलों के विरोध के कारण प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक भी कार्यसूची में प्रवेश किए बिना स्थगित कर दी गई। विजिट वीसा प्रकरण में गृहमंत्री रमेश लेखक का इस्तीफा की मांग करते हुए राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी सहित विपक्षी दलों के सांसदों द्वारा विरोध किए जाने के बाद बैठक कार्यसूची में शामिल हुए बिना ही स्थगित कर दी गई। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक कल शुक्रवार जेठ 30 गते को दोपहर 1 बजे के लिए बुलाई गई है। नेपाल सरकार ने भारत के अहमदाबाद से बेलायत के लिए उड़े 242 यात्रु सवार एयर इंडिया के यात्रु वाहक विमान दुर्घटनाग्रस्त होने पर दुख व्यक्त किया है। परराष्ट्र मंत्रालय ने आज एक विज्ञप्ति जारी कर दुर्घटना में जान गंवाने वाले प्रति के ऊपर श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ का कामना किया है। इसी तरह राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने भारत के अहमदाबाद से संयुक्त अधिराज्य लंदन के लिए उड़े एयर इंडिया के विमान आज दुर्घटनाग्रस्त होने के खबर से स्तब्ध होने की जानकारी साझा किया। दुर्घटना से हुए मानवीय क्षति प्रति राष्ट्रपति पौड़ेल ने सामाजिक संजाल एक्स मार्फत गहरा दुख व्यक्त किया है। लंदन गैटविक के लिए उड़े एयर इंडिया के फ्लाइट 171 बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर उड़ान भरने के 2 मिनट बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। भारत के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने कहा कि जहाज में 2 पायलट और 10 चालक दल के सदस्य सहित 242 लोग सवार होने की पुष्टि है। विमान में 169 भारतीय, 53 लोग वेलायती, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाली यात्रु सवार होने की जानकारी एयर इंडिया ने दी। बता दें कि विमान में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे और हादसे में कोई भी व्यक्ति को जीवित होने की आशा नहीं होने की जानकारी अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर जीएस मल्लिक ने दी। बाजुरा के ही अति विकट माने जाने वाली हिमाली गांव पालिका स्थित धीम गांव में बिजली पहुंची है। गांव पालिका ही बड़े गांव के रूप में रहे धीम में पहली बार बिजली बत्ती पहुंचने से स्थानीय लोगों के सालों से बिजली बालने का सपना साकार हुआ है। हिमाली गांव पालिका के सहयोग में संचालित कुआड़ी नदी लघु जल विद्युत परियोजना का लाइन विस्तार पश्चात वार्ड नंबर 6 स्थित धीम गांव में बिजली पहुंची है। पृथ्वी राजमार्ग अंतर्गत मुगलिंग मलेखु सड़क खंड में रात में सवारी आवागमन बंद करके स्तोरोन्नति किया जाएगा। इसी जेठ 30 गते से आगामी आषाढ़ 7 गते तक रात के समय में सवारी आवागमन बंद करके स्तोरोन्नति की जाने की तैयारी है। सड़क के बड़बांग नदी, मोवा नदी, खटौती नदी और गोमती नदी में आरसीसी बीम रखने के काम के लिए सवारी बंद किया जाएगा। ये जानकारी नागढुंगा मुगलिंग तर्फ सड़क परियोजना के प्रमुख केदार प्रसाद नेपाल ने दी। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन
भाग्यवानी बाबू राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे त पनि एनटिसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसी को डे प्याक लिन *14# ह्यास डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षा प्रणालीमा परिवर्तन गर्दै हुए इसे आधुनिक प्रविधि सम्पन्न व्यावहारिक और रोजगारोन्मुख बनाने पर जोर दिया है। आज प्रधानमन्त्री निवास बालवाटार में आयोजित काठमाण्डु विश्वविद्यालय परिषद की 99वीं बैठक में विश्वविद्यालय के कुलपति एवं प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो रोजगार सृजन और स्वरोजगार के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार कर सके। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में सामान्य छात्रों की पहुंच बढ़ाने पर जोर देते हुए चिकित्सा शिक्षा में दी जा रही 75% छात्रवृत्ति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता जताई। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री तथा विश्वविद्यालय के सहकुलपति रघुराज पंत ने बैठक में शैक्षिक सुधार और परिवर्तन के लिए मंत्रालय द्वारा की जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्राध्यापक प्रोफेसर डॉ अच्युत प्रसाद वागले ने कहा कि शिक्षण के साथ साथ अनुसंधानात्मक विश्वविद्यालय की अवधारणा को व्यवहार में लाने के लिए नीतिगत स्तर पर कार्य किया जा रहा है। बैठक में कल जेठ 30 को धूलीखेल में आयोजित होने वाले 30वें दीक्षांत समारोह के दूसरे चरण के लिए विभिन्न संस्कायों के 1129 छात्रों की ग्रेड सूची को मंजूरी दी गई। साथ ही रजिस्ट्रार को प्रोफेसर डॉ राजीव श्रेष्ठ द्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष 2082-83 के 4,03,80,00,000 रुपए के प्रस्तावित बजट सहित कार्यक्रम को भी पारित किया गया। इसके अलावा बैठक में पिछले आर्थिक वर्ष का लेखा परीक्षण प्रतिवेदन और चालू आर्थिक वर्ष की कार्य प्रगति प्रतिवेदन भी स्वीकृत किया गया। राष्ट्रीय सभा अंतर्गत की विधान व्यवस्थापन समिति में कुछ नेपाल आयन को संशोधन करने के लिए बने विधेयक 2080 के ऊपर आज भी धारागत विचार विमर्श हुआ। समिति की आज सिंह दरबार में हुई बैठक में कुछ नेपाल आयन को संशोधन करने के लिए बने विधेयक पर विचार विमर्श हुआ। राष्ट्रीय सभा की संघीयता सबलीकरण तथा सरोकार समिति ने वन तथा वातावरण मंत्रालय को पहले दिए गए निर्देशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर चर्चा करते हुए उन्हें तत्परता से लागू करने का आग्रह किया है। आज आयोजित बैठक में समिति ने मंत्रालय द्वारा निर्देशों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान वन तथा वातावरण मंत्री एन बहादुर शाही ठकुरी ने बताया कि देसी लकड़ी के उपयोग को बढ़ावा देने और इसके लिए प्रतिक्रियाओं को सरल बनाने हेतु विभिन्न नीतिगत एवं रणनीतिक पहल की जा रही है। परराष्ट्र मंत्री डॉ आरजू राणा देउवा ने कहा कि नेपाल भारत बीच विभिन्न क्षेत्रों में हो सकने वाले संयुक्त साझेदारी और कनेक्टिविटी के माध्यम से दोनों देशों में साझा समृद्धि हासिल हो सकेगी। आज नेपाल भारत रणनीतिक संवाद संबंधी काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री डॉ देउवा ने कहा कि नेपाल भारत बीच व्यापार, पार वहन और लगाने के सहयोग को तीव्रता देकर कनेक्टिविटी के माध्यम से आर्थिक साझेदारी को आगे बढ़ाना होगा। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के अहमदाबाद में एयर इंडिया के एक यात्री विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 से 4 लोगों की मौत हो गई है। विमान उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें 232 यात्री और 10 क्रू मेंबर थे। बीबीसी गुजराती के सहयोगी पत्रकार भार्गव पारिख ने अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर जीएस मल्लिक से बात की है और इसमें उन्होंने 2 से 4 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कुछ सर्वाइवर हो सकते हैं, लेकिन अभी तक हमें 2 से 4 लोगों के शव बरामद हुए हैं। मलिक ने कहा कि 41 लोगों का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है और राहत और बचाव कार्य जारी है। एयरलाइन ने यात्रियों को जानकारी देने के लिए एक हॉटलाइन 1856-91-444 स्थापित की है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत के अहमदाबाद में 242 यात्रियों वाली एयर इंडिया विमान दुर्घटनाग्रस्त। दुर्घटना पर नेपाल सरकार ने किया दुख व्यक्त। मलेखु मुगलिंग सड़क स्तोन्नति के लिए कल से आषाढ़ 7 तक रात को सवारी आवागमन होगा बंद। बाजुरा के विकट हिमाली गांव पालिका के धीम गांव में बिजली पहुंचने से 273 घर लाभान्वित। शिक्षा को प्रविधियुक्त और जीवनोपयोगी बनाने पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दिया जोर। और भारत के अहमदाबाद में एयर इंडिया के एक यात्री विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से हुई 204 लोगों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।